आचार्य गुरुवर विद्यासागर म्हणून होगी और कोई वो प्रदीप पीयूष वाली देखो उसमें वो क्लियर हो जाएगा। मैं अपनी वो लेके नहीं आया बुक इसलिए शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता नांगम न संगम न स्वेक्षा न कायम न संगम न स्वेक्षा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगम न भोगम न व्याधिर्न शोक न भोगम न व्याधिर्न शोक न कोपम न मानम न माया न लोभम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो गीतरागम नमो गीतरागम न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम न जन्मम न मृत्यु न मोहम न चिंता न मृत्यु न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न काश्यम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा न वर्णम न मुद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादिजालम न पुण्यम न पापम न चाक्षादिगात्रम न चाक्षादिगात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो न स्वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा न शुक्लम न मोहम न तंद्रा चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम नाद्यं न मध्यं न अन्तं न चान्यत् न चिन्तं न चान्यत् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावान् न क्षेत्रं न कालो न भावान् न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपम् न शून्यं न चैत्यं स्वरूपं न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम् न भिन्नं न परमार्थमेकं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं रूपं नमो वीतरागम् आत्मा राम गुणाकरं गुणनिधिम् गुणाकरं गुणनिधिम् चैतन्यरत्नाकरं सर्वे भूतगतागते सुखदुःखे सुखदुःखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा स्वमनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशगर्षहृदयम् हरिवंशगर्षहृदयम् श्रीमान् हृदा विद्यताम् विद्राग भगवान् की कोई भी लाल वाली तो थी वो पुस्तक श्लोक में दी हैं पर उनको पूरी की पूरी समझाने के लिए आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगी मुझे उसमें से नहीं होंगी कैलकुलेट अकेला पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं अर्थ बाद में बता दूंगा अप्रकम्पाद्भुत केवलौघा लेकिन ये नहीं है इंद्र वज्र सत्वेषु मैत्रीं यह कि विसट कंदोत दलानुयारम है विसट कंदोत दलानुयारम सुलोयनम चंद समान तुंगम होनाजियम चंपय पुप सोहम तम प्रकम्पाद्भुत केवलौघा नित्या प्रकम्पाद्भुत केवलौघा स्फुरन् मनः पर्यय शुद्ध बोधा मनः पर्यय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञानबलप्रबोधा दिव्यावधि ज्ञानबलप्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना क्रियासु परमर्षयोना कोष्ठस् धान्योपममेकबीजं संभिन्न संस्रोत
त्रिपदानुसारी संतो त्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना ये जो है 64 रिद्धियों को धारण करने वाले, वैसे तो केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता उनके पास ही 64 रिद्धियां होती हैं, और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता तो बाकी 63 रिद्धियों का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। गणधर महाराज ऐसे हैं जिनको कि दीक्षा लेते ही 7 और 63 रिद्धियां हो जाती हैं। तीर्थंकरों को भी ऐसा ही है। विशेष रूप से जो है यहाँ पर अपन पूजा के पहले और उन सब रिद्धिधारी मुनि जनों को भी अपने कल्याण में कारण बने ऐसी भावना भा रहे हैं। तो कह रहे हैं रिद्धियाँ 7 प्रकार की होती हैं, बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, औषधि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि और अक्षीण महानस और अक्षीण महालय, या ऐसे शामिल करेंगे तो ये दोनों भी हो जाएंगे। मैं इसलिए थोड़ा सा आज फिर भी अगर गलती होगी तो मैं उसको सुधार दूंगा। कल 7 रिद्धियां होती और उनके भेद प्रभेद 64 होते हैं, अपन इसमें देखें एक एक रिद्धि के सारे भेद प्रभेद इसमें बताए जा रहे हैं। नित्य हैं और अप्रकंपात, प्रकंपित होना मतलब वाइब्रेट होना, और अप्रकंप मतलब स्थिर। तो कह रहे हैं जो नित्य हैं और स्थिर या कि अचल हैं, नित्य के मायने अविनाशी भी ले सकते हैं, और केवलौघा भूत से ले लिया है अद्भुत, नित्या प्रकंपात भूत, प्रकंपात अद्भुत, या अप्रकंप और अद्भुत, तीन विशेषण बना दिए, अविनाशी हैं और अचल हैं और अद्भुत हैं। ऐसे केवल ज्ञान के धारक जो मुनि हैं, केवल ज्ञान होने के बाद भी मुनि ही कहा जाता है। पुलात व कुशकुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथा, ये पांचों निर्ग्रंथ हैं, इसमें जो स्नातक हैं वो स्नातक केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वो स्नातक कहलाते हैं, या जो अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले उनको स्नातक कहते हैं। सामान्य रूप से तो स्नातक बैचलर को कहते हैं, ग्रेजुएशन को, लेकिन हमारे यहाँ पर ये टेक्निकल वर्ड है स्नातक, अर्थात जो अंतर मुहूर्त के बाद और केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, या जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो कह रहे हैं जिन्होंने अविनाशी, अचल और अद्भुत केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसे केवल ज्ञान के धारी मुनि महाराज हमारे लिए और हमारा कल्याण करने में निमित्त बने। स्फुरन मना पर्याय शुद्ध बोधा, और जिनका मना पर्याय ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान भी एक रिद्धि है, हाँ केवल ज्ञान एक रिद्धि है 64 रिद्धि में, और मना पर्याय ज्ञान भी एक रिद्धि है। तो कह रहे हैं मना पर्याय ज्ञान जो दैदीपमान है, ऐसे शुद्ध ज्ञान के धारी वे भी हमारे लिए कल्याणकारी हों। और दिव्यावधि ज्ञान वल्लभ प्रबोधा, और अवधि ज्ञान भी एक रिद्धि है। तो ये सब बुद्धि रिद्धि के 18 भेद पढ़ रहे हैं अपन पहले नंबर, उसमें से पहला केवल ज्ञान रिद्धि, दूसरे मना पर्याय ज्ञान, और तीसरे दिव्य अवधि ज्ञान। दिव्य अवधि ज्ञान ये सब सम्यक दृष्टि के ही होंगे, कुअवधि नहीं है, अवधि ज्ञान है, और उसमें भी दिव्य, दिव्य के मायने होता है या तो परमावधि या कि सर्वावधि, और सामान्य रूप से देव नारकियों को देशावधि भी होता है, बहुत थोड़ा सा होता वो, और ये विशेष मुनि जनों को ही होता है परमावधि और सर्वावधि, और किसी को नहीं होता। ये रिद्धियाँ, एक चीज़ अपन पहले समझ लें कि ये रिद्धियाँ सामान्य किसी को नहीं होती, तीन गतियों में तो होती नहीं है, ना देवों के होती हैं, ना वो जो विक्रिया रिद्धि है देवों के, वो वैक्रिय शरीर की वजह से है, वो तपस्या के फलस्वरूप नहीं है, इसलिए उसको कन्फ्यूज नहीं करें आप। देवों के नारकियों के विक्रिया करने की सामर्थ होती है वो बाय बर्थ, जैसे कि उड़ने की सामर्थ पक्षियों को होती है, वो उस तरह की कोई रिद्धि नहीं, उनने तपस्या से अर्जित नहीं की है वो सामर्थ। तो देवों के भी नहीं होती, नारकी की भी नहीं होती, और तिरंचों की भी नहीं होती, ये मनुष्यों में भी सामान्य मनुष्य की नहीं होती, सिर्फ मुनि महाराज के ही होगी। और जिनका चारित्र श्रेष्ठ होगा, महामुनि उनके लिए ही पंचम काल में किसी को भी 64 रिद्धि में से एक भी नहीं होगी। हाँ, ये भी डिक्लेयर है, क्योंकि इतनी विशुद्धि वर्तमान में संभव ही नहीं है। ऐसे दिव्य अवधि ज्ञान अर्थात परमावधि और सर्वावधि, जैसे मन परय ज्ञान सिर्फ मुनिजनों को ही होता है, ऐसे ही अवधि ज्ञान भी जो परमावधि सर्वावधि है वो भी सिर्फ मुनिजनों को ही होता है। इस तरह के दिव्य अवधि ज्ञान को धारण करने वाले महान ऋषि रीतिधारी मुनियों को ऋषि बोलते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वे स्वस्ति अर्थात मंगल करें, क्रियासु परमर्श योना, वे हमारा कल्याण करें, वे परम ऋषि हैं। फिर और कौन सी हैं बुद्धि रिद्धि? कोष्ठस्थ, एक कोष्ठस्थ धान्योपम, जैसे कि कोठे में अपन धान भर के रख देते हैं बीज, और फिर बाद में जब अवसर आता है तो उसको निकाल लेते हैं, ऐसे ही जो है बीज रूप में बहुत सारा ज्ञान अपने भीतर और रख लेते हैं, और एक शब्द कहा और सारा कुछ आ गया। एक एक शब्द के नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद्विद्या दर्शनाय तेदेश्यामि समीचीनम धर्म। अब शुरू हो गया, और 150 श्लोक हैं तो फिर 150 श्लोक उनके रिकॉल मेमोरी में सब, जैसे कि आपने आज कंप्यूटराइज है जमाना तो एक आपने मेमोरी खोली तो उसमें जो ढेर सारी पूरी की पूरी फ्लॉपी आ गई, ऐसे जो है कोष्ठस्थ धान्योपम, जैसे कि कोठे में धान भर के रखे जाते हैं, और इसी तरह से अपने एक बीज मात्र, कोई भी एक बीज पद आ, ये बीज पद है, तो इस बीज पद के स्मरण मात्र से जिनको और सारा ज्ञान द्वादशांग का प्राप्त हो जाता है वो एक बीज बुद्धि कहलाती है। संभिन्न संश्रोत्री, संभिन्न संश्रोत्री वो कहलाती है, जैसे कि चक्रवर्ती का कटक, कटक का मतलब होता है सेना, आर्मी, चक्रवर्ती की सेना खड़ी है अक्षौणी सेना, जिसमें कि 1,00,000 पदाती होते हैं, 84,000 रथ होते हैं, और उतने ही हाथी होते हैं और उतने ही घोड़े होते हैं, एक अक्षौणी सेना इतनी बड़ी होती, और ऐसी कई अक्षौणी सेना उसकी खड़ी हुई हो, और उसमें हाथी चिंघाड़ रहे हैं और घोड़े हिंडना रहे हैं, और वो क्या मैसेज दे रहे हैं, एक हाथी दूसरे को क्या मैसेज दे रहा है, एक घोड़ा दूसरे को क्या मैसेज दे रहा है, 1,00,000 पदाती आपस में एक दूसरे को क्या बात कर रहे हैं। दूर खड़े हुए मुनि महाराज चाहें तो सबके बारे में अलग अलग, संभिन्न संस्रोति, सबकी आवाज को स्पष्ट और अलग अलग अर्थ सहित डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बुद्धि, सोचिएगा, अपन तो हल्ला हो रहा है तो ये कहेंगे हल्ला हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लेकिन वो उसने सारे लोगों की बातचीत, कौन किससे क्या बात कर रहा है, उसका क्या अर्थ है, सबकी आवाज अलग अलग, सब पहचान करके ये रिद्धि होती, संभिन्न संस्रोत्रित और पदानुसारित, किसी एक पद को, चार पद मिलकर के एक वाक्य बनता है, नमः श्रीवर्धमानाय एक पद हो गया, ठीक है, नमो अरिहंतानम एक पद हो गया, इस तरह से एक पद, उस पद को लेकर के और सारा का सारा ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है ग्रंथ का, वो कहलाती पदानुसारी रिद्धि। इस तरह ये चार और बुद्धि रिद्धि हो गई, इनको धारण करने वाले ऋषिराज हमारा मंगल करें। अपन ने कितनी रिद्धियां पढ़ ली? 7, 18 हैं बुद्धि रिद्धि में, अब इनको नेक्स्ट फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, इतना ही रखें हैं। स्फुरण मतलब दैदीपमान, स्फुरायमान होना, तो उसको क्या कहेंगे, टू एनलाइट, स्फुरायमान होना, टू एनलाइट, इस तरह इतना शुरू तो हो गया। मैं सोच रहा था कि बहुत बड़े बड़े हैं आज तो, कागज ही बड़े हैं कि प्रश्न ही बड़े, पता नहीं, एक कितना बड़ा, एक दूसरा इतना बड़ा, फिर एक तीसरा इतना बड़ा, फिर एक छोटा वाला, फिर उसके बाद में एक बड़ा वाला, फिर ये इस तरह से, हाँ ये छोटे छोटे वाले ऊपर ही लगाने, ठीक है, आज जो है बड़े बल को लॉस हो जाएगा, छोटे वाले ऐसे लगाएंगे। ये चाहते हैं कि आज महाराज का दीक्षा दिवस है, उसके उपलक्ष्य में कोई एक नियम दिला दें जिसका पालन हम आजीवन कर सकें, तो ये जनरल सबके लिए बोल रहे हैं या कि इंडिविजुअल? तो ऐसा हम लोग वहाँ करते थे पिछले बार जब उसमें थे गंज बासोदा में, तो रोज़ जो है क्वेश्चन आंसर के समय छोटे बच्चों की स्लिप आती थी कि हम इस चीज़ का त्याग कर रहे हैं, हम इस चीज़ का, तो क्या ऐसे ही कर रहे हैं क्या, कोई कोई नियम ले रहा है क्या खड़े होकर के? तो ले सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है, या कि आप ऐसा चाह रहे हैं कि कॉमन हम सबको एक नियम दिलवा दें, ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ, कोई बच्चे ने लिख करके दिया है, हम चाहते हैं कि हमें कोई नियम दिला दें जिसका हम पालन आजीवन करें। तो तुम स्वयं लेना चाह रहे हैं, अपने स्वयं के लिए या सबके लिए? अब तुम्हारे अपने लिए, तो सबसे बढ़िया नियम तो कौन सा नियम दे दें बच्चों को?
जितना उन पर पले
ले भाई। महाराज कह रहे कि जितना तुमसे पालन हो वो नियम ले लो,
छोड़ी होने तो।
हाँ, अपने आप सोच करके और ले लो कि ये हम जीवन भर पालेंगे, क्योंकि जीवन भर लेने वाला थोड़ा कठिन मामला है। तो हम हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कैसी? कि 9 बार नमोकार मंत्र रोज पढ़ेंगे जीवन भर, इसमें कोई घाटा नहीं। किसी से कुछ पूछने नहीं जाना, किसी से कुछ पूछने नहीं जाना, किसी से कुछ करना नहीं। बीमार है तो बीमार है, कहीं बाहर गए हैं तो कहीं बाहर, तो भी कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। 9 बार नमोकार तो पढ़ने में आराम। और इतना ही नहीं, उसमें कौन सी भावना भाना ये और जोड़ लो। जितनी देर में 9 बार नमोकार पढ़ूं उतनी देर भावना भाऊं कि मेरा मरण अच्छे से हो, मुझे समाधि पूर्वक मरण हो, तब तो और आनंद आ गया। हाँ, जब भी मेरे मरण का अवसर आवे, मैं शांति पूर्वक समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, ऐसी भावना जो जीवन भर भाएगा 9 बार नमोकार पढ़ के, उसकी समाधि भी बहुत अच्छे से आखिरी समय, ताकि अच्छी गति प्राप्त हो, ऐसा कर सकते हैं। ये छोटे से लगते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि कोई भी नियम छोटा नहीं होता, क्योंकि सब नियम भगवान के द्वारा बताए गए हैं, इसलिए सब नियम बड़े ही हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, हमने आपकी इतनी मदद कर दी, इसके बाद आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या करना है। ये भी है, ये जो है ना, ऐसी रेवड़ी नहीं है कि बांट दो। हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं रहते कि हाथ उठा दो, ये सब फोकट की बातें हैं। ये धर्म तो बिल्कुल इंडिविजुअल है, धर्म की इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं करो, उसको बहुत कॉमन मत बनाओ। वो हमारे अपने स्वेच्छा पर, हमारे अपने निर्णय पर आधारित है। जब हमारे भीतर वैसा भाव जागृत हो तभी लेना चाहिए, इसलिए उसको कॉमन मत बनाइए। हमारी बात का बुरा नहीं मानना, क्या करें, हमारा वैसा सोच है, जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो। अष्टमी 14 को होटल में खाना नहीं खाएंगे, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आज महाराज के दीक्षा दिवस पर यही नियम हम लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा। अष्टमी 14 को होटल का खाना नहीं खाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। इतना तो बहुत हो गया, पहले अवक्ष का ही त्याग करना चाहिए। जिसने भी लिया है उसके लिए आशीर्वाद, महाराज की तरफ से भी हमने दे दिया, दोनों का काम करने अच्छा नियम है। हैं, कितने दिन के लिए है ये होटल का खाना नियम ले रहे हैं? कुछ थोड़े समय का नहीं लिखा है इसमें? जीवन भर का नहीं, थोड़े समय का, ये जितने दिन का भी लेना अपने मन में सोच लेना। देशभक्ति के लिए कोई भजन या कि कोई इस तरह का सुना दीजिएगा आप अपनी वाणी से। अरे वाह, वो बसता तो है सारे जहां से अच्छा हिंदू सपा तो हमको आता ही नहीं है, वो जो बच्चों को आता है, बच्चे तो आज गाया भी होगा बच्चों ने बहुत मजे से। हाँ, हमको कोई ये इसमें भी यही लिखा है, चलो ये अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं। महाराज क्या रंग खेलना पाप है? जो लोग रंग खेलते हैं, दो चीजें हैं, देखो रंग वाला खेल तो निकल गया, उसमें भी हिंसा होती, आने वाला कौन सा खेल है? पटाखे वाला। उसके बारे में पूछना चाहिए था कि हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे, इतनी हिंसा होती है और रौद्र ध्यान है, हिंसा में आनंद मानते हैं। इतना ही नहीं, हिंसा हो जाती है तो गिल्टी फील करते हैं, ये तो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन उस समय हमसे हिंसा होती है और हम एंजॉय करते हैं। हम एक पटाखा फूटता है तो बहुत मजा लेते हैं कि अरे वाह, और उसकी अकेले आवाज से कितनी जीव राशि, छोटी मोटी के तो प्राण ही निकल जाते हैं उसकी आवाज से, अपन तक का तो जी बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता अगर अनजाने कोई एक पटाखा बाजू में फोड़ देवे तो, और छोटे मोटे जीवों के तो प्राणांत हो जाता। इसलिए ये अपने को इससे बचना चाहिए। रंग में भी हिंसा है, पर उससे ज्यादा हिंसा तो इस वाले, ये पता नहीं कैसे जो है, होली के दिन तो एक दूसरे से मिलने और परस्पर स्नेह व्यक्त करने का, प्रेम व्यक्त करने का पर्व था, रंग में रंग गए हम, कौन से वाले मैत्री और वात्सल्य के रंग में रंग गए, तो अपन ने तो अब उसमें कीचड़ डालना शुरू कर दिया दूसरे के ऊपर, ये क्या है। इसी तरह से पटाखे, अपनी खुशी, कौन से वाले पटाखे फोड़ो जिससे कि मन आनंदित हो जाए, ऐसी बात कहो जिससे कि मन में आनंद छा जाए, वो पटाखे थे, ये वाले पटाखे नहीं थे जिसमें कि हिंसा होने लगे हैं। तो अपन ने बहुत चेंज कर लिया उसको, करिएगा आपने प्रश्न पूछा तो। हाथ से माला फेर सकते हैं, हाँ फेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई उपवास बीच में टूट जाए तो फिर क्या दोबारा करना चाहिए? आपकी सामर्थ हो तो ज़रूर करना चाहिए दोबारा। कई बार ऐसा होता है उपवास के दिन वॉमिट हो गई, या कि और कोई असुविधा अपने को समझ में आने लगी और ज़रूर हो गया कि अब तो प्राण ही नहीं बचेंगे तो पानी लेना पड़ा, ऐसी स्थिति आ जावे तब फिर जो है अपना वो। या कि ऐसा भी हो जाता कई बार कि बाहर गए हैं, अब मंदिर की सुविधा नहीं है और चौदस तो है, तो चौदस का उपवास तो कर लिया लेकिन पूजा नहीं मिली, पूजा नहीं मिली तो एक और उपवास करेंगे पूजा के साथ करें। वास्तव में तो ठाट वाट से जिस दिन पूजा करें उसी दिन उपवास श्रेष्ठ है। और अगर अपन ने अकेले चार प्रकार का भोजन नहीं किया और मंदिर के दर्शन भी नहीं मिल पाए तब फिर एक एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए, ठीक है। धर्म का अर्थ क्या है, छोटे बच्चे ने लिखा है, हमने वो जो एबीसी ऑफ जैनिज्म है तो उसमें क्या लिखा, आर्ट ऑफ लिविंग, या कि नोबल लाइफ, एक आदर्श जीवन जीना ही रिलीजन है, धार्मिक होना है, या कि हमारा आदर्श जीवन हो इसके लिए हम जो भी करते हैं वो सब धर्म है। दूसरा, धर्म के मायने हमारा अपना कर्तव्य है। अच्छा, छोटा मोटा कर्तव्य नहीं है, हमारा अपने आत्म कल्याण का भी कर्तव्य है, हमारे परिवार के सुख सुविधा का ध्यान रखना भी कर्तव्य है, हमारे समाज का उत्थान हो इसके लिए निमित्त बनना ये भी कर्तव्य है, हमारे देश में सभी सुखी रहें इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ये भी कर्तव्य है, ये सब। और प्राणी मात्र के प्रति दया रखना यह भी धर्म है। इस तरह ये सब कर्तव्य हमारे जीवन में धर्म के रूप में आ जाते हैं। और वैसे तो आचार्यों ने क्या लिखा हुआ है, जो हमारा स्वभाव है वही वास्तव में धर्म है, दया भी धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी धर्म है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव आदि भाव हैं उनको धारण करना वो भी धर्म है। इस तरह से बहुत सी परिभाषाएं बनाई। आज तो एक भजन छोटे महाराज से आप जरूर सुनवाइएगा, अभी देखो क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर देखते हैं महाराज जाएंगे कहाँ, अभी तो जब तक मन बना लेंगे वो कि हाँ सुनाना है। 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद फिर महिला या पुरुष इस बारे में इस धरती पर जन्म लेते हैं या कि लेते हैं तो महाराज या माता जी बनेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद वादा क्यों नहीं निभा? अच्छा, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा एक जगह आता है कि नरक में जब अपन जाते हैं और वहाँ के दुख भोगते हैं तो उस समय क्या क्या मन में सोचते हैं, अब मैं यहाँ से निकलूँ तो जरूर से मनुष्य होकर के मुनि बन करके तपस्या करूँगा और अपना कल्याण कर लूँगा, ये तो मेरे से सहन नहीं होता नरक का दुख। लेकिन जैसे ही यहाँ आकर के जरा संसार की हवा लगी सब भूल जाते हैं। हाँ, वो इनने लिखा है कि ऐसा क्यों होता है, इसके लिए तो आचार्यों ने एक श्लोक ही लिख दिया, जानित जई चिंतित जई जीव जरा मरण भय दुखई विशेषुना विरज जई अहो सुबद्धो माया गंठियो। ये जीव जानता है, विचार भी करता है कि यहाँ इस संसार में भटकते भटकते जन्म मरण का दुख सहते मैंने कभी कुछ भी प्राप्त नहीं किया, फिर भी ये संसार से विमुख नहीं हो पाता, विरक्त नहीं हो पाता। अहो सुबद्धो माया गंठियो, ये मोह की ग्रंथि बड़ी सुदृढ़ है, बांधी अपने हाथ से है, अब उसको खोलना बहुत कठिन। अपने हाथ से कोई व्यक्ति और कोई चीज कर ले स्वयं तो उसके लिए दूसरा क्या करेगा, दूसरे की हेल्पलेस हो जाते हैं उस समय जब हम ही अपने अहित के लिए कुछ करते हैं, वही चीज इसमें भी है। ऊपर के खंड में रखी प्रतिमाओं की प्रक्षालन करते समय नीचे के खंड में रखी प्रतिमाओं के ऊपर हाथ और शरीर के ऊपरी भाग की छाया पड़ती है, क्या ये दोषपूर्ण है? यदि हाँ तो निवारण का उपाय समझाने का कष्ट करें। प्रतिमाएं बड़ी और बजनी हैं, उनको उठाना तो संभव ही नहीं है, खिसकाना भी संभव नहीं, ऐसी स्थिति में क्या करें? भाई कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा और उपाय देखना पड़ेगा। आपके यहाँ पर समोशरण बीच की वेदी में नेमिनाथ भगवान के में बहुत बड़ा है और उसमें आप सामने से भी करेंगे साइड से करेंगे तब भी उल्लंघन तो हो गई भगवान ऊपर वाले भगवान का करते समय और हाथ का स्पर्श नीचे वाले जो वेद रखी हुई हैं, इसलिए समोशरण में रखते समय ही बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपन लोग ऐसा रख लेते हैं पर उनके प्रक्षाल में बहुत दिक्कत होती है, वहीं रखे रखे तो प्रक्षाल बहुत मुश्किल है, उनको वहाँ से हटाना भी संभव नहीं है। थोड़ा इसके बारे में अभिनय तो आपके खुद समझ में आ रही है, हाँ मतलब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा
वैसे तो
नहीं, प्रक्षाल करते हैं इसको भैया थोड़ा सा देख करके, वैसे तो हो सकता है एडजस्ट करना चाहिए उसमें कुछ इस तरह का। महाराज मैं बहुत छोटा हूँ पर मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। हाँ बहुत छोटा तो है वो बच्चा, लिख रहा है कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ पर मुझे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो इतना काम कर लो कि अगर गुस्सा आ भी जाए तो बोलना नहीं। हाँ अगर इतना कर लो तो बहुत बहुत काम निपट जाएगा। दूसरी बात, जिस वजह से गुस्सा आ रहा है ना वहाँ से थोड़ा दूर हट जाओ। किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे मन की बात नहीं कही और हमको गुस्सा आ रहा है, हम उस बात को अनसुना कर दें, वहाँ से हट जाएं। नहीं तो कुछ भी बोल देंगे या कि रोने लगेंगे। हाँ वीपिंग भी गुस्से का एक रूप है, चार रूप हैं क्रोध के, या तो पूरा शरीर कांपने लगना, आंखें लाल हो जाना, थर थर पूरे शरीर से में कंपन होकर के पसीना आना शुरू हो जाना, ये बहुत तीव्र क्रोध की स्थिति है। और दूसरे नंबर की स्थिति ये है कि अपना माथा दीवार से फोड़ लेना, हाँ गुस्से में आकर के अपना ही अहित कर लेना। और तीसरी स्थिति है कि विड्रॉ करके एक कोने में जाकर के और रोना शुरू कर देना, वो भी क्रोध का एक रूप है। और चौथा रूप कौन सा है, किसी ने एक तमाचा मारा तो ये कहना कि सबसे अच्छा है कि अपन चुप रह जाएं, वहां से हट जाएं, उस चीज को महत्व ना दें। उपाय यही करना पड़ेगा। और फिर दूसरा, किसी दूसरे काम में अपने मन को लगा लेवे। बच्चों के लिए तो बहुत आसान है, जब गुस्सा आए तो क्या करना, कागज उठा करके बढ़िया से, कैसे करते हैं उसको मैं तो भूल ही गया, जहाज बनाना, जहाज बना करके उड़ाना शुरू। अगर चश्मा पहने हो तो चश्मा उतार करके पोंछो उसको, फिर लगा लो। अगर सामने बैठे हो तो टेबल ग्लाफ रखा हुआ है, किताबें रखी, सबको एक तरफ रखो, टेबल ग्लाफ को झटकार करके फिर बिछाओ, फिर सब रखो उस पर, फिर जमाओ, उतनी देर में गुस्सा वुस्सा सब चला जाएगा। ये उपाय है उससे बचने का। क्या करें, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कैसे कंस्ट्रक्टिव करें, उस समय जो एनर्जी है वो डिस्ट्रक्शन करने के लिए, कि कुछ भी बिगाड़ करके ही शांत होऊंगा मैं, बिना बिगाड़ के मैं शांत नहीं होऊंगा। तो बिगाड़ करने का मन है तो उसको बचाने के लिए किसी रचनात्मक कार्य में जिसमें अपना मन लगे उसमें लगा देना। महाराज आपकी दीक्षा, आपने दीक्षा कब ली और कहां ली, ये हमारे बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है पता लग जाएगा आपको, वैसे ली तो है हमने, ये तो कंफर्म है। आप कहां ली और कब ली हम समझ गए हैं कि क्यों पूछना चाह रहे हैं। वो सीधा नहीं लिखा उन्होंने कि आपका कब मनाए, मतलब क्या तैयारी आपकी कब, सीधा सीधा ऐसा। मैं घर में रात्रि में भोजन नहीं करता और ना जमीकंद खाता हूं, पर पार्टी में जाने पर मुझसे रहा नहीं जाता क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी खाते हैं तो मेरी इच्छा भी होती तो मैं भी खा लेता हूं। अब बताइए कि मैं क्या करूं। देखो उसने बहुत इनोसेंटली, बहुत बहुत ईमानदारी से, बहुत भोलेपन में उसने अपने मन की बात बता दी है। तो देखो ऐसा है, अगर इसके लिए अपन नियम ले लें तो फिर बच जाएंगे। एक इंदौर में छोटे छोटे बच्चे थे, वो 4 साल के। अब 4 साल के बेटे को उसने नियम ले लिया, क्या नियम, टॉफी नहीं खाएंगे, 1 महीने टॉफी नहीं खाई। और आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उनके यहां तो टॉफी के वो कमीशन एजेंट हैं, उनके तो टेबल पर रोज सुबह से डिफरेंट क्वालिटीज की जो नई टॉफी बनती है सबसे पहले उनके यहां आती है, क्योंकि वही सब कुछ एजेंसी है उनके हाथ। और ऐसा बेटा कह रहा है 4-5 साल का कि मैं 1 महीने टॉफी नहीं खाऊं। अब देखना उसका मजा, रोज तो उसको टॉफी चाहिए ही रहती थी, अब चूंकि नियम ले, उसने खुद अपने मन से लिया था और उसका निर्वाह भी किया। लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि कैसे किया, वो रोज अपनी टॉफी तो लेता था, मेरी टॉफी दो, और रख लेता था 1 महीने बाद खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। ठीक है, रोज नई नई टॉफी आती थी घर में, टेबल पड़ी रहती थी, वो उसको रोज 2-4 टॉफी मिलती थी, तो ला हमारी टॉफी दो, टॉफी लेकर के रख ली एक, लेकिन खाई नहीं उसे। ये बहुत बड़ी चीज है, उतने छोटे से बच्चे, एक एक छोटी सी गुड़िया ने 4-5 साल की, और क्या छोड़ दिया, छोड़ दिया मूली, मूली छोड़ दी 1 महीने के लिए। अब एक दिन ऐसा हुआ, उनकी दादी ने बताया कि महाराज ये बच्चे किस तरह करते हैं, हम बड़े लोगों तक को हमारे कान पकड़ लेते हैं ये, अगर इनको एक बार मन में आ जावे तो। और वो ठेले वाला आया और दादी ने और कहा कि क्यों ये मूली कैसे दी, और मूली देखने लगी। अब उसने उधर से देख लिया और बाहर आकर के पूरे ठेले के और दादी के चारों तरफ, हाँ दादी तो मूली खाती, दादी तो मूली खाती, महाराज ने कहा था कि मूली तो जमीकंद होता है, खाने नहीं चाहिए, हमारा तो त्याग है। एक महीने का उसका त्याग था, अब वो दे रही है मजा, हमारा तो त्याग है, देख तो आज मूली खाती दादी। बोले हमें लेना मुश्किल हो गया, वहीं धर दी हमने। हमने कहा हमें नहीं लेनी मूली। अब बताइए आप, ये छोटे बच्चों के मन में अगर एक बार आ जावे तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं और दूसरे को भी बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। इसने लिखा है कि जमीकंद वो अपने फ्रेंड्स के बीच में खा लेता है, मैं उस बेटे को सजेस्ट करूंगा कि तुम तो नियम ले लो, एक महीने जमीकंद नहीं खाऊं, कहीं भी चले जाऊं, फिर अगर ऐसी स्थिति बन भी जाएगी तो हमारा तो नियम है और नियम हमें तोड़ना नहीं है। अपन नियम और संकल्प नहीं लेते हैं तो फिर मन करता है कि कौन पूछ रहा है, खा लो, क्या फर्क पड़ता है। और नियम है तो एक तो मन ही नहीं होगा, अगर मन हो भी जाएगा तो नियम तोड़ने का मन तो नहीं होगा, किसी भी तरह मन मार करके अपन उस चीज को नहीं खाएंगे और बच जाएंगे उससे। उतनी देर कई तो काम है हमारे तो, जब हम लोग कभी घर में और कहा करते थे कि ये चीज ऐसी और ये चीज ऐसी और ये चाहिए, तो फिर माँ क्या बोलती थी, थोड़े से जिब्भा पर क्या बोलते हैं उसको, चौंटिया बोलते हैं हम तो बुंदेलखंड में, आप क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ऐसे मतलब अपनी जिब्भा को 20-25 मिनट को संभाल लो, ये उसके बाद पेट भरने पर सब अच्छा लगने लगता है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा देर का गले तक का स्वाद है, उसके बाद तो सब स्वाद बराबर ही है। अगर एक बार हम ये आदत डाल देवें, विनोबा के आश्रम में अस्वाद नाम का व्रत था, सबसे पहला व्रत आश्रम वासियों के लिए, अस्वाद व्रत, स्वाद नहीं लेना और चटनी खाना पड़ेगी, बढ़िया से बढ़िया चीज के साथ भी नीम की चटनी। अब बताओ अपन करेंगे इस तरह की तपस्या, अपनी इच्छाओं को इस तरह से जीतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, पर यदि कोई चाहे तो ऐसा संकल्प करके और कर सकता है। उस छोटे बच्चे को मैं यही कहूंगा कि वो थोड़ा थोड़ा एक दिन का ले लो, आज नहीं खाऊं, और उसी दिन अगर मौका आ गया तो बच जाएंगे। या कि जिस दिन मालूम है कि आज तो हमको किसी ना किसी पार्टी में जाना पड़ेगा, उस दिन का हमारा आज का जमीकंद का त्याग, एक दिन का बस, तो उस पार्टी में जाएंगे तो अब एक ही दिन का तो है, कल खाएंगे, आज तो नहीं खाएंगे, बच गए आप उससे, ऐसे भी कर सकते। महाराज मेरी जीवन साथी और मैं पिछले बहुत सालों से सास स्वाध्याय कर रहे हैं, मुझे दीक्षा लेने की कई बार इच्छा भी होती है, हालांकि ये मुझे बहुत स्पष्ट है कि कोई किसी को नहीं पालता पोसता, अपने अपने किए कर्मों का फल सब भोगते हैं, फिर भी माता पिता और सब परिवार को बेसहारा छोड़कर जाना गलत भी लगता है, डर भी लगता है कि उनका क्या होगा, फिर मुनिचर्या में निभा पाऊंगा कि नहीं, और चारित्रिक दुर्बलताएं भी उनको जीत पाऊंगा कि नहीं। जब प्रवचन सुनता हूँ तब तो लगता है कि मैं भी ऐसी ही वीतराग मुद्रा धारण करूं, ऐसी इच्छा तो बहुत होती है आप मार्गदर्शन करें। भैया इतना भी बहुत है आज के समय में, और मेट्रो सिटी में रह करके, महानगर में रह करके, और आपके किसी पूर्व संचित पुण्य का उदय है जिससे कि आपके मन में इस तरह का विचार आ रहा है, इस विचार को निरंतर बनाए रखिएगा, कभी भी इससे विमुख नहीं होइएगा। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि आप एक सीमा बना लीजिए जीवन में, मेरे पास ऐसी सीमा बनाने वाले बहुत से लोग हैं, 55 साल, 58 साल या कि 60 साल, गवर्नमेंट भी हमें रिटायर कर देती है, तब क्यों ना हम इससे अपने पहले ही अपने दायित्वों से भी हम मुक्त हो जाएं। सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताऊं, आपके बच्चों के हिसाब से आप तय कर लें कि इनकी मैरिज हो जाएगी और उनके बच्चे हो जाएंगे, तब तक हमारी उम्र 55-60 साल की होगी, या हो सकता है कि बच्चे समझदार हो गए और उनकी मैरिज हो गई, आप उनको पूरा काम सौंप के और पेइंग गेस्ट की तरह उनके साथ रहिए। मैं सहसा छोड़ने के लिए तो नहीं कहूँगा, एकदम पेइंग गेस्ट तो आप समझते हैं, बिल्कुल एक मेहमान की तरह हम महाराज के पास भी महीने भर रह के आएंगे, दोनों जीवन साथी और वो, और आप अपनी गृहस्थी चलाना, फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर एक महीने क्षेत्रों पर रह आएंगे। हो सकता है कि शुरू में वर्ष में 4 महीने बाहर रहें, 8 महीने घर में, और घर में भी तो इंटरफियर नहीं करना, उनको अपने तरह से करने दें, अपने को तो भोजन करना है, अपना स्वाध्याय करना है और घर में रहना है। इस तरह अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को, इसको बोलते वानप्रस्थ आश्रम, घर में रहकर भी दृष्टि जंगल की तरफ, जंगल में रहकर के दृष्टि घर की तरफ होने से बेटर है कि घर में रहकर के दृष्टि जंगल की तरफ रहे। आज के ऐसे समय में जबकि हमारे उपादान में योग्यता कम है, बाह्य निमित्त भी हमारे लिए प्रमोट नहीं करते हैं बल्कि हमें गिराने के निमित्त बनते हैं, तो हमें ऐसी स्थिति में ऐसा निर्णय ले ही लेना चाहिए अपने जीवन में कि एक एज के बाद फिर हम सब चीज़ों से विरक्त होकर के बच्चों को जिम्मेदारी सौंप करके और थोड़ा थोड़ा करके धर्म ध्यान, घर से बाहर निकलने पर जो धर्म ध्यान होता है वो घर में रह के नहीं होता भैया, ये ध्यान रखना। घर की 100 बातें घेरती हैं, और अगर अपन 10 दिन भी, आप कभी 10 दिन के लिए किसी पर्यूषण में किसी महाराज के पास जाके देखिएगा, 10 दिन पूरे उन्हीं के सानिध्य में, और मोबाइल भी मत रखिएगा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं किसी से, कोई जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अपन जबरदस्ती परेशान होते हैं। 10 दिन के लिए सबसे संपर्क तोड़ के फिर निराकुल होके रहिए, उसका आनंद अलग ही होता है। ठीक है 10 दिन ही सही साल भर में, पर उसका आनंद लें तो धीरे धीरे करके और आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी अपने आप, क्षेत्रों पर रहने से भी असुविधाओं के बीच में, प्रतिकूलताओं के बीच रह करके देख लीजिएगा कि अभी तो घर में तो सारी चीजें हाथ पे रखी मिलती हैं, सब व्यवस्थित रहता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। जब बिल्कुल अट्रेंडम हो, बिल्कुल अव्यवस्थित स्थिति बन जाए, तब भी हम कैसे कर पाएंगे, तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य अपने आप आएगी। और एक चीज़ और है, भयभीत होने से काम नहीं बनेगा, आपको साहस रखना चाहिए, मैं कैसा करूँगा, क्या होगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। कोई इस चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की जाती पहले से, हाँ कि मैं ऐसा ऐसा करके देखूँ, एक बार साहस पर हो जाए तो फिर दृढ़ता और साहस दोनों मिलकर के इस काम को आसानी से, बस संसार से उदासीनता होनी चाहिए। और स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए तत्व का तो बोध है ही, और रही बात परिचय विजय करने की, तो सबसे थोड़ा बहुत तो सहन करते बन ही जाता है। संसार की बहुत सारी चीज़ें अपन सहन करते ही हैं, नहीं करते हैं क्या, तो इसी तरह से सोच करके और आप अपना मन बना करके और कहिएगा भैया, बाकी बहुत अच्छी भावना है, ऐसा तो बहुत कम ही होता है। इसमें भी लगता है शायद ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, जब आपके मंगल प्रवचन सुनते हैं तो फिर दिशा बदल गई है, तब से ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान का के वचन सुन रहे हैं, मन में भावनाएं पवित्र होती हैं, हम ऐसा करें वैसा करें ऐसा मन में बहुत आता है, लेकिन परिस्थिति बस हमको अमल नहीं कर पाते हैं। अब देखिएगा, अपने को लगता है कि व्यक्ति इतना सुनता है और कुछ भी नहीं करता है, ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा, मुझे लगता है कि नहीं, भीतर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता हो। ऐसा नहीं होता कि कोई इतना मठर नहीं होगा, इतना पत्थर दिल नहीं होगा मेरे ख्याल से कि वो लगातार उस पर चोट पड़े और लगातार पानी पड़े और वो भीगे ही नहीं। ये बात अलग है कि परिणाम थोड़ी देर को भीगते हैं, फिर उसके बाद फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं, ये बात अलग है। पर इससे तो पढ़ करके यही लग रहा है कि व्यक्ति परिस्थितिवश जो है बहुत सारी चीजें, ये पूरी बात वही लिखी हुई है और उनने भी यही भावना व्यक्त की है कि आज तक आपने अपने प्रवचन में कहा कि किसी ने दीक्षा नहीं ली और ना कोई आरिका माता भी बनी है, क्या ये सौभाग्य जिनके पुण्य का उदय होता है उन्हीं को प्राप्त होता है? महाराज हमारा चाहने से कुछ भी नहीं होता, हमारे चाहने से, हमारा जो बच्चों के प्रति फर्ज है वो सामने आ जाता है। बहुत कठिन है, आसान नहीं है, इसलिए गृहस्थी करने से पहले ही निकलना श्रेष्ठ है। हमको पहले लगता था कि हमने थोड़ी जल्दी कर दी, पर अब हमको लगता है कि हमने ठीक समय पर ठीक निर्णय लिया, लेकिन अगर उस समय में थोड़ा सा चूक जाता, शायद उस दिन चूक जाता, तब भी मुझे भी यही ऐसे ही लगता जैसा कि आपको लग रहा है, क्योंकि एक क्षण ऐसा था, अगर कहीं कोई सर्विस ज्वाइन कर ली होती और जहां पैसा दिखता है आदमी सब भूल जाता, फिर उसके बाद वो स्थिति नहीं बन पाई और उसके पहले ही जो है और आचार्य श्री का सानिध्य मिल गया। आपने अपनी गृहस्थी कर ली है तो बिल्कुल भी व्यथित होने की बात नहीं है, गृहस्थी मुक्त होने के लिए कारण बन सकती है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों से तो अपन विमुख हो गए, रहा एक दायित्व तो अपने परिवार का, तो भैया वो भी कितने दिन तक, अपने बच्चों को पालने का अपना दायित्व है, बच्चों के बच्चों को पालने का दायित्व तो अपना नहीं है, ऐसा विचार करिएगा। दादी बनने का शौक तो सबका रहता है, लेकिन जरा विचार करें कि अपने बच्चे हमने पाल लिए, बड़े कर लिए पाल पोस के, अब बच्चों के बच्चे वो पालें, हमारा कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा सोच करके उनको सौंप करके, और थोड़ा सा, मैंने घर में रह करके कह रहा हूँ कि थोड़ा सा विमुख होने की कोशिश करिए, उन दायित्व से, क्योंकि अपन जबरदस्ती कई दायित्व अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं कि जैसे हमारे बिना चलेगा नहीं। नहीं भैया, सब चलता है, संसार बिल्कुल आराम से चलता, बस थोड़ा सा अपने को मन को जिसको अभी अपन जब प्रतिमाएं पढ़ेंगे तो उसमें यही बात आएगी कि क्रम क्रम से कैसे गृहस्थ में रह करके भी व्यक्ति और आरंभ का त्याग कर देवे, घर गृहस्थी की उतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको कह दो भैया हम रात में नहीं खाते ना हम खिलाएंगे, अब मेहमान आवे तो तुम ही खिलाना, तुम ही उनको जो करना वो करना, अब हम ना खाएंगे ना खिलाएंगे ना खाने वाले का समर्थन करेंगे, चलो कम से कम इतने विकल्प से तो बचे घर में रह करके भी। अभी तो ऐसा है कि जो आया सो उसको अब खिलाना है, मेहमान आए, ऐसे कई काम हैं जिनको कि हम और चाहें तो इनसे बच सकते हैं, पर गृहस्थी में रह करके तो बहुत कठिन ही है। महाराज से अपन एक भजन सुन लें आज, बाकी अच्छा है, भावना तो बन रही। मुझे लगता है कि मेरा बोलना सार्थक हो गया, इतना भी अगर आपके भीतर भावना बनी। मेरा तो चतुर्मास उसी को मैं सफल मानता हूँ कि जिसमें बहुत बड़ा कोई फंक्शन हुआ हो वो सफलता नहीं है, वो तो अपने आप कोई भी कर सकता है, सभी कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यदि किसी की लाइफ स्टाइल, एक व्यक्ति की भी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई और उसने अपने जीवन को और परिवर्तित कर लिया तो मैं सोचता हूँ कि सफल हो गया, अपना 4 महीने एक साथ मिल बैठ करके धर्म ध्यान करना सफल हो गया। तो सुनाए ये लगा दो भैया, ये
समय के एक समय के गन